نمدم صلی رسول اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خلقین حضرات، ایک سوال لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ولایت کا سلسلہ جاری تھا، اگر تھا تو کیا تب بھی ولایت کی مہر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے در سے لگتی تھی؟ اگر نہیں تو وہ کون لوگ کون تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں تخت لے آئے تھے اور جن کے ساتھ موسیٰ نے سفر کیا تھا؟ ہم اصل میں ایک بڑے کنفیوژن کا شکار ہیں، اور غیر ضروری طور پر اس احساس میں مبتلا ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں. یہاں اکثر اس بات کا ذکر ہوا مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے کہ ہم غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ایک مرتبہ میں انسانوں کی طرف بھیج دیا گیا تھا. ایسا ہے نہیں. اللہ کی طرف سے آنے والے سبھی پیغمبر، انبیاء کرام اور رسول اس پیغام کو یا تو لے کر آتے رہے یا پہلے سے لائے ہوئے پیغام کی توثیق کرتے رہے، اس کی تجدید آگے کرتے رہے. یہ ایک ہی پیغام تھا جو اس وقت کے لوگوں کی ذہنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں پر اتارا جاتا رہا، حتیٰ کہ قرآن کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا گیا. اسی لیے رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا. یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ یہی پیغام پہلے آتا تھا. ابھی کسی محفل میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں کیا صرف مسلمان جائیں گے، تو میں ان سے بھی عرض کر رہا تھا کہ وہ تمام یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تھے وہ حق پر تھے، وہ جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ اس وقت تک جو دین آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہودی اس پر عمل کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے. اسی طرح جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آنے والے پیغام کو لبیک کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک حق پر تھے اور اللہ کے سچے دین کو فالو کر رہے تھے، اللہ کے सच्चे पैगंबर को फॉलो कर रहे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद, नबूवत का ऐलान होने के बाद, जो लोग ईमान नहीं लाए वो हक पर नहीं रहे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के पैगाम को मानने से इनकार कर दिया और वो पहले से आए हुए पैगाम पर कायम रहे। तो वो ईसाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ईसाई थे, वो जन्नत में जाएंगे अगर वो नेक काम करते थे, साले लोग थे। इसी तरह उन लोगों में जो नेक लोग थे, आप उनको सेंट कह लें, आप उनको राबी कह लें, उनको राहब कह लें, नाम कोई भी रहे, वो अपने वक्त के नेक और सही लोग थे। इत्तफाक ये है कि दुनिया का सबसे पहला मुसलमान भी यहूदी था, वो यहूदी जो अपने मजहब पर कायम था और वो रूहानी शख्सियत था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उसने ये ऐलान कर दिया था कि इस रास्ते से पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे, तो अगर वो मेरी जिंदगी के बाद यहां से गुजरे तो ये रुक्का मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया जाए। तो वो शख्स पहला इंसान था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले तस्दीक की थी, क्योंकि यहूदी अल्लाह को एक मानते हैं। तो जब उसने तस्दीक की कि वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर होंगे, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, तो वो इस गवाही के देने से मुसलमान हो गया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान मरा है बंदा, क्योंकि जो कलमा पढ़कर हम मुसलमान होते हैं वो कलमा क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह को एक मानता था वो, और उसने गवाही दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की, तो इस निस्बत से वो मुसलमान कहलाता है। तो वो भी रूहानी शख्सियत था, उसकी रूहानी कुव्वत की वजह से उसको ये मालूम था कि यहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हुए तशरीफ ले जाएंगे, और उसकी उसने गवाही दे दी थी। मुसलमानों के यहां वो लोग जो अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं वो वली अल्लाह कहलाते हैं। अगर उर्दू में, उर्दू का दामन इतना वसी ना हो कि वो दूसरी तमाम जुबानों के अल्फाज को अपने अंदर समो सके, क्योंकि उर्दू असल में है ही मजमुआ मुख्तलिफ जुबानों से लिए गए अल्फाज का, ये बजाते खुद तो जुबान नहीं है कोई, इसलिए इसका दामन बड़ा वसी है कि दुनिया की हर जुबान के अल्फाज को अपने अंदर समा लेती है। तो अगर ये सलाहियत ना हो उर्दू में तो फिर वली अल्लाह इसमें कहां से आएगा, क्योंकि वली तो अरबी का लफ्ज है। तो हम धोखा वली अल्लाह से खाते हैं असल में। और दूसरी बात यह है कि हम अपने आप को या दूसरों को अपने बराबर नहीं समझते, इस वजह से हम ये कहते हैं कि शायद दूसरे मजाहब में अल्लाह का कोई बरगजीदा बंदा नहीं हो सकता। अपने अपने वक्त पर वहां उनमें रहे और वो सच्चे दीन थे अपने वक्त पे। सिर्फ जब नया पैगाम आ जाता रहा तो पहला पैगाम मतरूक हुआ, कैंसल नहीं हुआ। जिस तरह एक किताब हम शाया होती है, टेक्स्ट बुक हम लेते हैं मार्केट से, तो दो साल तीन साल के बाद उसका नया एडिशन जब छपता है तो किताब तो वही रहती है लेकिन उसके अंदर बहुत से इजाफे हो जाते हैं और नई डेवलपमेंट जो भी होती है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है तो नया एडिशन हो जाता है। तो पहली किताब मतरूक नहीं, मतरूक होती है, कैंसिल नहीं होती। ये नहीं कहा जाता कि वो गलत है किताब, ये है कि वो पुराने ख्यालात पर मबनी है तो मतरूक हो गई, कैंसिल नहीं हुई और तजदीद शुदा किताब नया एडिशन की सूरत में हम तक आ गई। तो ये दीन एक एक पैगंबर से आते आते एडवांस होता गया और कुरान पाक जब उतरा तो वो फिर मुकम्मल दीन कर गया, वो उसके अंदर पूरा मुकम्मल दीन है। इसलिए कुरान तस्दीक करता है पहले उतरने वाली किताबों की और कुरान तस्दीक करता है पहले उतारे गए पैगामों की, कुरान तस्दीक करता है पहले आने वाले पैगंबरों की। वो उनकी तर्दीद नहीं करता है, तस्दीक करता है सबकी। खुद हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम पहले आने वाले पैगंबरों पर ईमान न ले आए कि वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे, और कुरान से पहले आने वाली किताबों पर ईमान न ले आए, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो हम उन पैगंबरों को और उनके लाए हुए किताबों को नऊज़ बिल्ला किस तरह से कंडेम कर सकते हैं। हाँ, जिस चीज को हम कंडेम करते हैं और उसको कंडेम किया भी जाना चाहिए वो है उन किताबों के अंदर जो एडिशंस एंड ऑल्ट्रेशंस इंसानों ने किए हैं, तहरीफ जो हुई है वो कंडेम की जानी चाहिए, उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन उस पैगाम को और पैगंबरों को हम उनकी तस्दीक करते हैं। दूसरा सवाल इन्हीं साहब ने लिखा है कि हमें बचपन ही से सिखाया जाता है कि नमाज में कुछ मखसूस रकात फर्ज हैं, कुछ सुन्नत मौकेदा और गैर मौकेदा, और कुछ नफल हैं। क्या सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है जो कि फर्ज या नफल दोनों को अदा करने का आसान तरीका है? अगर ऐसा ही है तो नमाज में सुन्नत को इन दोनों से अलहदा क्यों बयान किया गया? ये मामला तरीके का नहीं है, नमाज तो नमाज है, इसकी बाइफरकेशन की गई है ये इतनी रकात फला नमाज की फर्ज है कि उसको हम छोड़ नहीं सकते, किसी कीमत पर उसे नहीं छोड़ा जा सकता, अगर किसी मजबूरी के तहत छूट जाए तो उसकी कजा अदा की जाए, वह हमें पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। कुछ रकात हर नमाज में वो हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल एहतमाम और मुसलसल पढ़ा है, तो वो उतनी रकात हर नमाज की जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल एहतमाम पढ़ा भी है, आपने उसकी तलकीन भी फरमाई है और उसे तसलसल से पढ़ा है, वो उतनी नमाज का हिस्सा हमारे समझने के लिए उसको सुन्नत करार दे दिया, मुअक्कदा सुन्नत, कि उसके छोड़े जाने से हमें गुनाह होगा। इसी तरह कुछ ऐसे रकात हर नमाज में हैं जो गैर मुअक्कदा हैं कि अगर उनको पढ़ लिया जाए तो उसका सवाब है, अगर किसी वजह से छूट जाएं, छूटनी चाहिए नहीं लेकिन अगर छूट जाएं तो उसमें खलल नहीं वाकई होगा नमाज में। और नवाफिल नमाज का वो हिस्सा है जो पढ़ लिए जाएं तो सवाब है, ना पढ़े जाएं तो गुनाह नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अदा फरमाया या नहीं अदा फरमाया कभी, तो इसको सिर्फ इस तरह से बायफरकेट किया है। अदरवाइज तरीका नमाज जो है, नमाज की अदायगी का तरीका, वो वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से पढ़ते रहे हैं। तो हम दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। इसी इन्हीं के सवाल का अगला हिस्सा कि ये भी तालीम दी जाती है कि आम मिसाल के तौर पर जब जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए तो पहले चार सुन्नतें अदा फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी सुन्नत अदा करते थे? ये मैंने अर्ज किया कि ये हमारे लिए सहूलत के लिए बाद में उनके नाम रख दिए गए, हम सुन्नत कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक अमल फरमाते थे, तो जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और हम उसकी पैरवी करें उस अमल की, तो वो सुन्नत कहलाता है। ये बात का नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सुन्नत कर समझ के नहीं पढ़ा है, तो नमाज है पूरी। तो ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। एक सवाल ये, अकरब के दिन क्या होते हैं जो हम अक्सर शादी और खुशी के फंक्शन इन दिनों में करने से परहेज करते हैं? मुसलमान के ईमान के मुताबिक सभी दिन और सभी साथ अल्लाह की बनाई हुई है, और मुसलमान शगुन नहीं लेता। मुसलमान ये नहीं कहता कि ये दिन अच्छा और ये बुरा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जुमा उसे फजीलत हासिल है दूसरे दिनों पर, लेकिन वो सिर्फ इबादत की हद तक है कि हम ये कहते हैं कि वो मुबारक दिन है, दूसरों पर फजीलत रखता है। जैसे महीनों में रमजान को फजीलत हासिल है, लेकिन मुसलमान इस तरह से नहस और साद के चक्कर में नहीं पड़ता कि कौन सी सात साद है और कौन सी सात मनहूस है। हमारे यहां ये नहीं है, ये हिंदू से हमारे यहां आई है ये चीज। और जहां तक ये अकरब की बात है, ये टर्मिनोलॉजी इल्म नजूम में इस्तेमाल होती है, और वो शायद आप टर्म पूरी नहीं किसी वजह से लिख पाए। इल्म नजूम में एक टर्म यूज होती है, कमर दर अकरब, के इल्म नजूम के मुताबिक चांद जो है वो एक साइकिल मुकम्मल करता है 2.5 दिन में, एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज तक, एक जोडिक साइन से दूसरे जोडिक साइन तक का। तो जब वो एक मखसूस पोजीशन में आता है तो उसको हम इल्मे नजूम में ये लोग ये कहते हैं कि ये कमर दर अक्रब हो गया, कि अक्रब में ये दाखिल हो गया चांद, इसलिए ये मनहूस है। मुसलमान इसमें यकीन नहीं रखते और ना ही यकीन रखना चाहिए। सब दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, बेधड़क हो के हमें तमाम काम करने चाहिए कि अल्लाह उसमें बरकत देने वाला है। ये सिर्फ अक्रब मैंने आपकी मालूमात के लिए बयान कर दिया, अदरवाइज मुसलमान ऐसी चीजों पे नहीं जाएगा कभी। ये एक और डेनमार्क से सवाल आया हुआ है, इसलिए अंग्रेजी में है कि सम पीपल लर्न बाय हार्ट सम सूरा फ्रॉम बैक टू टॉप मीन्स इन रिवर्स ऑर्डर, इज इट राइट? ये भी अमलियात का एक हिस्सा है कि हम किसी सूरा को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू कर दें, जिस तरह सूरह फातिहा को हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते हैं, तो वहां ये अमलियात का हिस्सा है कि उसको आमीन से शुरू करेंगे हम और रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पर जाकर खत्म करेंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन चीजों से कि हम दुनियावी अगराज की खातिर कुरान को रिवर्स ऑर्डर में ले जाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। मैं इसीलिए एक बात जहां कहीं मौका मिलता है, मीडिया पर हो या मुख्तलिफ गैदरिंग्स में, तो एक बात पे जोर देता हूं कि मुसलमान के शाया निशान नहीं है कि अपनी गर्ज में इतना अंधा हो जाए कि ईमान ही खो बैठे। इससे परहेज की जानी चाहिए। और ये जो रिवाज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, मैं भी शायद यही करता हूं। अभी मुझे आने में यहां 10 मिनट देर हो गई, उसकी वजह यह थी कि मैं कार के दरवाजे को हाथ नहीं लगा रहा था कि मैंने अभी हाल ही में एक पीर साहब से वजीफा लिया है कि कार का दरवाजा जितना जोर लगाने से खुलता है उससे आधे जोर में खुल जाएगा, 15 मिनट का वजीफा पहले पढ़ो। इस तरह कार में बैठते हुए सीट पर कि मुझे सीट चुभे नहीं, मैं आधे घंटे का वजीफा पहले पढ़ता हूं। किस तरफ हमें ले जाएंगी ये चीजें? बेअमली की इंतहा है। हम मुख्तलिफ टॉक शोज में डिस्कस करते रहते हैं कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो जब हम बेअमली के इस मकाम पर जा पहुंचेंगे कि कोई सा भी काम करने से पहले हम वजीफा जरूर पढ़ेंगे, तो फिर यही हाल होगा जो कुछ हो रहा है। तो इन सूरा की तरतीब को तब्दील न कीजिए, बहुत गुनाह का काम है। अब इन्हीं का एक सवाल है Denmark, he said, what is Qist and its importance in Rohaniyat? I have listened from you about Insaf, Isar and Qurbani, but Qist is also mentioned in Quran. मुझे मालूम नहीं कि किस बैकग्राउंड से आपने ये बात पूछी है, क्या उसकी उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पूछने का. तो जब तक कि इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे मालूम ना हो, शायद मैं जवाब न दे पाऊं कि वो गलत हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाएगा. अगर आप अपने सवाल को अगली इतवार तक क्लियर कर दें, ज्यादा इलेबोरेट कर दें कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो मैं यकीनी तौर पर कोशिश करूंगा कि इसका जवाब आपको दे दूं. एक सवाल है कि इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के अरूज व ज़वाल के मुस्बत और मनफी असरात क्या हुए हैं, अखलाकी, मुआशरती, समाजी, सियासी, मुआशी और साइंसी पहलुओं पर रोशनी डालिए. भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, तालीम की कमी है. अब ये मैं इस एक घंटे की नशिस्त में अखलाकी, मुआशरती, समाजी, सियासी, मुआशी और साइंसी डायमेंशंस अगर बयान करने लगूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यह किसी तरह भी मुमकिन होगा. इसको मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि एक साइकिल है जो चल रहा है. बहुत सी कौमें, बल्कि यूं कहिए सभी कौमें, अपने अरूज को भी पहुंची हैं, फिर अपने जवाल को चली गई हैं. मार्केटिंग में भी एक टर्म हम यूज करते हैं कि हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है. ये सिर्फ मार्केटिंग ही में, इट्स नॉट ट्रू ओनली इन मार्केटिंग, बट इट्स ट्रू फॉर एवरीथिंग. पहाड़ जो है उनका भी एक लाइफ साइकिल है, दरख्त है उनका एक पहाड़ एक लाइफ साइकिल है. एक चीज वजूद में आती है, रफ्तार रफ्तार अपने अरूज को पहुंचती है, और उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और एक वक्त आता है कि वह खत्म हो जाती है. इसे कौमों के अरूज और ज़वाल का एक साइकिल है कि एक कौम वजूद में आती है, अपने अरूज को पहुंचती है, फिर ज़वाल पज़ीर हो जाती है. मुसलमान अल्लाह के पैगाम को लेकर उठे थे, खलूस नियत, अखलास और जद्दोजहद उनका वतीरा रहा. जब तक उस वक्त तक मुसलमान अरूज को जाते रहे. अपने अरूज के जमाने में मुसलमानों ने साइंस पर बहुत काम किया. आज भी बहुत सी चीजों की बुनियाद उन्हीं थ्योरीज पर है या उन्हीं इजाजात पर है जो मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस कराई थी दुनिया को. ये वो दौर था जब यूरोप जहालत में डूबा हुआ था. हम उस जजीरा नुमा अरब के सहरा से उठे थे और आधी से ज्यादा दुनिया पर छा गए. न सिर्फ ये है कि आधी से ज्यादा दुनिया पर इस्लामी मुमलिकत कायम हुई थी, बल्कि हमने इमरानियात पर बहुत काम किया, हमने साइंस में बहुत काम किया, मेडिकल साइंस में हमने बहुत काम किया, नए नए तसव्वुरात पेश किए दुनिया को। तो ये जमाना कोई 700 साल कायम रहा हमारा, रफली बात कह रहा हूं, कुछ का ख्याल है कि ये शायद 500 साल थे। तो हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया, इल्म की रोशनी हमने उस जमाने में फैलाई, लेकिन जब हमारे अंदर से खलूस से नियत खत्म हो गई, अखलास खत्म हो गया हमारा, जब हमने जद्दोजहद से मुंह मोड़ लिया और वो जाब्ता अखलाक जो इस्लाम ने हमें दिया है, जो रब ताला ने हमें दिया, हम उससे डेविएट करने लग गए, तो नतीजे के तौर पर हमें जवाल आना शुरू हुआ। दरमियान में कहीं कहीं फिर अगर कोई ऐसा स्पेल आ गया हमारे दरमियान, अल्लाह ने हमें फिर अरूज की तरफ ले गया अल्लाह, लेकिन बाद में जवाल आ गया। तो हमारे अरूज के जो सबसे गहरे असरात हैं दुनिया पर, वो ये है कि हमने इल्म की रोशनी फैलाई थी, और यूरोप भी इस चीज को तस्लीम करता है कि मुसलमानों ने जो बुनियाद फराहम की थी, हमारी आज की तरक्की उसी बुनियाद की मरहून मिन्नत है कि हमने उस काम को वहां से पकड़ा जहां मुसलमान इसको ले गए थे, और वो फेयरली एडवांस स्टेज थी। इसको गैर मुस्लिम, जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, एक बड़ा ज़र्फ अता किया है, वो खुले दिल से इसको मानते हैं कि मुसलमानों ने जो कुछ विरसा छोड़ा, हमने उसको पकड़ा और उससे आगे तरक्की दे दी हमने। इस पर अगर तफसीली बातचीत आप चाहें तो इस तरह से हो सकता है कि इसके जो पहलू आप जानना चाहते हैं, जैसे अखलाकी है, मुआशरती है, समाजी, सियासी, मुआशी, साइंसी, तो ये छह के छह पहलू हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं हर इतवार को। ये कुछ लोगों ने सलाम लिख के भेजा है, अहमदपुर शर्किया से। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा अता फरमाए। ये भी सवाल ऐसा है कि जिसके लिए मैं हमेशा ही कर्ज किया करता हूं कि इंसान जिस चीज का अहल नहीं है उस पर उसे जुबान नहीं खोलनी चाहिए। सवाल आपने पूछा है, इसका ताल्लुक फतवे से है। मैं फतवा देने का मुजाज नहीं हूं। जिस चीज का मैं मुजाज नहीं हूं उसके सिलसिले में मैं अर्ज भी कुछ नहीं करूंगा। मेरा इस सिलसिले में एक मशवरा है कि आप किसी अच्छे मुफ्ती साहब से राब्ता कायम कर लीजिए, वो आपको इस पर फतवा दे देंगे। मतलब आपका दूसरा सवाल यह है कि हम लोग सिर्फ नमाज के वक्त पैंट शलवार को ऊंचा करते हैं और टखने नंगे करते हैं, बाकी वक्त इसका ख्याल नहीं करते, ये अमल कैसा है? बात यह है कि ये लिबास हमारा उसके मुताबिक होना चाहिए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई है कि टखनों से ऊंचा रहना चाहिए, तो उसको हमेशा रखना चाहिए। मेरे समेत जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो गलत करते हैं, इसको ठीक कर लिया जाना चाहिए। एक साहब ने किसने पूछा कि क्या शम्स शाह शम्स तबरेज और शाह शम्स सबजवारी एक ही शख्सियत के नाम है? ये दोनों शख्सियतें अलहदा हैं, अगरचे दोनों ईरानी हैं, ईरान से ताल्लुक है, लेकिन दो मुख्तलिफ शहरों से। एक साहब सबजवार से हैं और दूसरे साहब तबरेज से हैं। मुल्तान में जो हस्ती दफन है शाशम सबजवारी हैं, बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं, इल्म के एक बड़े मकाम पर, वलायत के बहुत ऊंचे दर्जे पर फायज हैं। और शाह शम्स तबरेज अपने रंग में शहनशाह हैं, और आपका मजार तुर्की में है, कोनिया में, मौलाना रोम के मजार से अबाउट हाफ ए मील हाफ ए माइल दूर है वो, उसमें अराउंड 1 किलोमीटर, तो ज्यादा फासला नहीं। अगर आप लोग वहां जाएं तुर्की में, तो हम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जाते हैं वहां, हमें एक दिक्कत होती है। इस्तांबुल में जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं, तो हम आमतौर पर जाके वहां टैक्सी वाले से जब ये कहते हैं कि हमें हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजार पर ले जाओ, वो नहीं समझ पाता इसको। वो जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अय्यूब कहते हैं। तो अगर आप उसे कहें कि अय्यूब, तो वो फौरन आपको जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु तक ले जाएगा। इसी तरह अगर कूनिया में हम जाएं और वहां किसी टैक्सी वाले से कहें कि मौलाना रोम के मजार पे जाना है, वो नहीं समझ पाएगा। अगर आप रूमी कहिए तो फौरी तौर पर वहीं सीधा ले जाएगा आपको। लाइकवाइज शाह शम्स तबरेज रजी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह साहब का अगर हम पूछें, वहां के पास ही है, पैदल आसानी से जाया जा सकता है, कि शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह साहब का मजार कहाँ है, तो वो हैरानों को मुंह देखने लगता है। तो अगर आप ये कह दें कि तबरेजी, तो फौरी तौर पे आपको गाइड कर देगा कि इधर मेन बाजार में चले जाइए, नेक्स्ट जो राइट टर्न आ रहा है वो टर्न लेंगे, सामने मजार है। तो ये शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह साहब तो दफन है कोनिया में, तुर्की में, और आपका मजार ज्यादा बड़ा नहीं है, दो छोटे छोटे कमरे हैं। पहला कमरा खाली है, उससे नेक्स्ट कमरे में आप आराम फरमा रहे हैं, बावजूद इसके के कमरे छोटे हैं। जब जाके आदमी वहां खड़ा होता है, फातिहा पढ़नी शुरू करता है, तो एक बार डिस्टिंक्ट किस्म का एहसास बढ़ता है, एक फीलिंग आती बड़ी स्ट्रांग कि मैं किसी शहंशाह के दरबार में खड़ा हूं। हकीकतन आदमी को यही फील होता है कि पुराना जमाना है और शहंशाह का दरबार है, उसमें मैं हाजिर हूं, वही हैबत, वही रोब, वही दबदबा, वहां ये फीलिंग बड़ी स्ट्रांग है। अगर मुल्तान में जाएं हम शाह शम्स सबजवारी साहब के यहां, तो वहां एक सुकून और मोहब्बत का एहसास है, वहां जलाल नहीं है, इसलिए कि वो शख्सियत ही बहुत प्यार करने वाली है, बहुत मेहरबान आदमी है। मेहरबान शाह शम्स तबरेज भी हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी में एक रोब और दबदबा है। बिल्कुल इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट हम कर लेंगे कि अगर अल्लाह हम पर मेहरबानी फरमा दे और जनाब हजरत अली करम अल्लाह वजह की नजरें इनायत हो जाए हम पर, तो कभी मुलाकात हो जनाब हजरत अली करम अल्लाह वजह से, तो वहां एक अजीब मोहब्बत का एहसास होता है, बहुत कंफर्ट होता है। इतना कंफर्ट के आदमी बेतकल्फी से बात करने लगता है जनाब हजरत अली करम अल्लाह वजह से, कोई रोब नहीं है, हालांकि इतनी बहादुर हस्ती और इतने जलाल वाले, लेकिन एक अजीब मोहब्बत होती है कि आदमी बड़ी बेतकल्फी से गुफ्तगू कर लेता है जनाब हजरत अली करम अल्लाह वजह से। इसके मुकाबले पर जनाब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, आदमी कितना ही बहादुर क्यों ना हो, कितना दुलेर क्यों ना हो, हिम्मत नहीं कि जनाब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे मुबारक की तरफ देख जाए, इस कदर रोब और दबदबा और जलाल है वहां। इन दोनों में भी ऐसे ही एक फर्क है कि शाह शम्स सबजवारी साहब के यहां आप जाइए तो एक आपको सुकून का, मोहब्बत का एक एहसास होता है कि मैं ऐसी जगह आ गया जहां मेरे लिए अमान है। इसके बरक्स जनाब शाह शम्स तबरेज साहब की खिदमत में हाजिर हूं तो वहां जलाल है, और ये तकरीबन तमाम लोग जो वहां गए उन सबका एक ही तरह का एहसास हुआ कि वहां जाके आदमी फातिहा पढ़नी शुरू करे तो एहसास होता है कि शहनशाह का दरबार है, मुअद्दब खड़ा रहना ही बेहतर है, वहां इंसान लिबर्टी नहीं ले सकता। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।